पृष्ठ संख्या 163। हाल ही कविता के द्वारा जागृति का संदेश देना चाहते थे और उस समय काव्य रचना का ऐसा पतन हो चुका था कि लोग केवल शब्द आडंबर, अलंकार और चुटपुटी बातों में आनंद प्राप्त करने को कविता का उद्देश्य समझते थे। इसलिए हाल ही का बड़ा विरोध किया गया, उनकी रचनाओं की हंसी उड़ाई गई और उनके दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की गई। परंतु हाल ही अपनी धुन के पक्के थे, उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। निश्चय ही उन्नति की ऐतिहासिक शक्तियाँ उनको योग दे रही थीं, इसलिए थोड़ी ही समय में मध्यम वर्गीय शिक्षित समुदाय में उनकी कविताएं बड़े चाव से पढ़ी जाने लगीं। हाली अपने स्वभाव से एक उपदेशक और शिक्षक थे। कविता जब तक अत्यंत रोचक, सुंदर और मनोरंजक ना हो तो उपदेश और शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकती। हाली कभी कभी कलात्मक दृष्टि से यह विशेषताएं पैदा करने में असफल रह जाते थे। इसलिए वे लोग जो उनके उपदेशों से सहमत नहीं थे, वह उसे नीरस पाते थे। परंतु सच यह है कि हाली के हृदय में जो कुछ था, वही उनकी जवान पर आता था। उनके दिल में जो ज्वाला धधक रही थी, उस समय थोड़े ही लोग उससे परिचित थे। उनकी दूरदर्शिता जिस भविष्य का साक्षात्कार कर रही थी, उसकी रूपरेखा साधारण लोगों के सामने ना थी। इसलिए बहुत से लोग उनकी कविताओं के केवल उपदेशों का एक संग्रह समझते थे। हाल ही एक कवि मात्र नहीं थे, एक बड़े आलोचक भी थे। वह कविता के बने बनाए ढर्रे पर चलकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना नहीं चाहते थे, बल्कि नई काव्य रचना के जन्मदाता बनने की लगन करते थे। इसलिए उन्होंने अपने विरोधियों की कटु आलोचना की परवाह किए बिना उस नई शैली का प्रचार किया जो उन्हें अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए अधिक उपयोगी जान पड़ती थी। उनकी भाषा सरल, विचार गंभीर और शैली नवीन थी, क्योंकि उन्होंने जीवन और साहित्य के संबंध को समझ लिया था। इसलिए वह कभी अभिव्यक्ति मात्र के लिए कविताएं नहीं लिखते थे, उनका उद्देश्य भी कला के प्रति कलावादियों जैसा ना था। इसलिए जितना समय बीतता जाता है, हाल ही की श्रेष्ठता और सम्मान में वृद्धि होती जाती है। वह नई काव्य रचना के संदेश दूत माने जाते हैं और उनकी अनेक त्रुटियों के बावजूद उनकी प्रगतिशीलता आज भी अविश्वास और दुविधा में पड़े रहने वाले कवियों के लिए पथ प्रदर्शक है। उनकी बहुत सी कविताएं भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। यहाँ केवल उदाहरण के लिए कुछ शेर दिए जा सकते हैं। मुनाजाते वेवा में लिखते हैं, पृष्ठ संख्या 164। रेत की सी दीवार है दुनिया, ओछे का सा प्यार है दुनिया। साथ सुहाग और सोग है यहाँ का, नाव का सा संयोग है यहाँ का। हार कभी और जीत कभी है, इस नगर की रीत यही है। तेरे सिवा यहाँ ऐ मेरे मौला, कोई रहा है और ना रहेगा। बस ऐ ना उम्मीदी ना यों दिल बुझा तू, झलक ऐ उम्मीद अपनी आखिर दिखा तू। जरा ना उम्मीदों उम्मीदों को पारस बंधा तू, फसुरदा दिलों के दिल आखिर बढ़ा तू। तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी हैं, जली खेतियाँ तूने सरसब्ज की हैं। बहुत डूबतों को तैराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने। उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने। बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। कफस में जी नहीं लगता किसी तरह, लगा दो आग कोई आसिया में। कलक और दिल का सिवा हो गया, दिलासा तुम्हारा बला हो गया। हाल ही ने ना तो खुलकर देश के राजनीतिक संघर्षों में भाग लिया और ना स्पष्ट रूप से ऐसी कविताएं लिखी थी जिनमें राजनीतिक समस्याओं का वर्णन हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता था, यह बात स्पष्ट होती जाती थी कि भारत में कला और जीवन का संबंध उस समय तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक खुलकर पृष्ठ संख्या 165 यहाँ की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख न किया जाए। नई चेतना के परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी में कांग्रेस जन्म ले चुकी थी। वह एक छोटी सी ठंडी चिंगारी थी जो आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा की हवाएं खाकर ज्वाला बन गई और अभी अधिक समय नहीं बीता था कि भारत की जनता उसकी ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखने लगी। उस समय उसको पूर्णतया ना तो उच्च वर्ग की सहानुभूति प्राप्त थी और न निम्न वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित थे। ब्रिटिश राज्य की प्रेरणा से सांप्रदायिक संस्थाएं भी बन रही थीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ ही में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि सांप्रदायिकता के झंडे लेकर मैदान में उतर आए। यह अंग्रेज़ों की बड़ी भारी जीत थी, क्योंकि इससे एक ओर तो राष्ट्रीयता का मोर्चा निर्बल होता था, दूसरी ओर जनसाधारण अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल इन्हीं धार्मिक संस्थाओं में ढूंढता था। यदि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होता है कि राजनीति और सांप्रदायिकता को मिलाकर सुधार की ओर अग्रसर होने की चेष्टा भी उसी प्रकार जारी थी जैसे राष्ट्रीयता के मोर्चे को दृढ़ करके। इस संबंध में यह भी याद रखना चाहिए कि धार्मिक होने और सांप्रदायिक होने में बड़ा अंतर है, और भारत के इतिहास में इस अंतर के बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। कई धार्मिक संस्थाएं विदेशी राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता के संघर्ष में सम्मिलित थीं, परंतु सांप्रदायिक संस्थाएं किसी न किसी रूप से अंग्रेजी राज्य की सहायक सिद्ध होती थी। उर्दू काव्य में अधिकतर स्वतंत्रता की लहर ऊंची और सांप्रदायिकता का रंग फीका है। इस समय के दो बड़े कवि शिबली और अकबर, जो धार्मिकता को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझते थे, अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भावनाएं प्रकट करने में किसी से पीछे न थे। मौलाना शिबली, जिनका उल्लेख गद्य रचनाकारों के साथ आएगा, फारसी और उर्दू के एक बड़े कवि थे। मुस्लिम लीग बन चुकी थी और मुसलमानों को राष्ट्रीयता से दूर खींचने का यत्न कर रही थी। मौलाना शिबली ने अपनी बहुत सी कविताओं में बड़े उल्लास और शक्ति से लीग की आलोचना की। वह अंग्रेजी राज के विरोध को धार्मिक कर्तव्य जानते थे और मुसलमानों को जगाते हुए उन्हें दासता के बंधनों को तोड़ने का उपदेश देते थे। उनकी कविताओं में व्यंग्य की मात्रा अधिक होती थी, क्योंकि शत्रुओं पर चोट करने में व्यंग्य एक बड़ा यंत्र सिद्ध होता है। उनके इसी रंग को कुछ दिन बाद मौलाना जफर अली खान ने चमकाया और सैकड़ों कविताओं में अंग्रेजी राज्य और उसके अत्याचार की बड़ी आलोचना करके बारंबार जेल गए। मौलाना शिबली ने बहुत सी कविताएं नहीं लिखी, फिर भी उनका काव्य संग्रह अध्ययन करने योग्य है। उन्होंने एक मसनवी सुबह उम्मीद भी लिखी है, जिसका विषय मौलाना हाली के मुसद्दस से मिलता जुलता है। उनकी कविताओं में अदले जहांगीर और शहर आशोबे इस्लाम सुप्रसिद्ध है।